आज के सबक में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा ना, ला तहवान फुसूम, तो मैंने आपको उसका एक मानी हवा और ख्वाहिश बताया। तो हवा का एक मानी मोहब्बत करना भी होता है, चाहत और ख्वाहिश। तो ख्वाहिशों से बंदों की बड़ी मोहब्बत होती है। क्या पता चला कि ख्वाहिशें जिन चीजों से होती है ना, इंसान उससे बहुत मोहब्बत रखता है। और इसी तरह से बैयिनात का जो लफ्ज़ है, इसकी जमा बैयिनात, मैयिनतुन की ये जमा है, और खुली हुई चीज, जाहिर, मुबर्रम, क्लियर कट चीजें। और कफ़ीना जो है तकफ़िया से है, मस्तर के मानी में पीछे कर देना, पीछे भेजना। और इसी तरह रूहुल कुदस एजाजी नाम है जिब्राइल का, इसके दो हिस्से हैं, रूह और कुदस। और रूह परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उसमें, यानी कुदस अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, तो उसी तरफ निस्बत करके रूहुल अमीन कहा गया इनको। मतलब यह कि ये उनकी इज्जत की जा रही है इसमें, ठीक है। और गुल्फ की, गुल्फ जमा है अगलफ की, ना समझने वाला, और गिलाफ यानी हम अपने दिल में कोई खुराक नहीं रखते, बल्कि हमारा दिल ऊपर से पूरे का पूरा महफूज है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये जो दो आयतें हम इकट्ठी पढ़ेंगे, आयत नंबर 90 से 91 और 92, आप कह सकते हैं कि इन दो आयतों में बनी इसराइल की पूरी तारीख शुरू से आखिर तक समेट दी गई है। एक एक लफ्ज पे नजर रखेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप आज के दौर के मुसलमानों की बात पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों आयतों को इकट्ठा पढ़ के फिर इस पे इंशाल्लाह जो बात होगी वो करूंगी। व इजा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, किन से? मदीना के यहूद से। लिखिए किन से? लहुम में हम, उनसे। और कीला कोई भी कह दे, यहाँ देखिए काला या कीलू कौलन, यानी अरबी जुबान में जो अंदाज इख्तियार किया वो अनयूजुअल है। मुराद ये कि जो भी इनसे कह ले, जब भी कह दे, क्या कहे? आमिनो, ईमान ले आओ। बिमान जल्लाह, उस पर जो अल्लाह ने उतारा, अनजल्लाह के नीचे एरो लिखे, नबी सल्लम पर जो उतारा यानी कुरान पे। मदीना में रहने वाले इन बनी इसराइलियों को जब दावत दी जाती है कि आओ ईमान ले आओ, उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नाजिल किया, मुराद कुरान ही है। कालू वो कहते हैं, कौन कहते हैं? लिखिए मदीना के वही साथी। बार बार ये लफ्ज़ बोझिल लगते हैं, लेकिन मैं आपका दिमाग सिर्फ इन आयतों के टेक्स्ट में लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतनी बाज़दफ़ा शिद्दत से भी इस बात को नोट करती हूँ। तो वो कहते हैं नोमिनो बीमा उन्जीरा अलैना, हम तो ईमान लाएंगे उस पर जो हम पर नाजिल हुआ। अब ये मा उन्जिला अलैना में क्या चीज़ थी? तौरात, या बनी इसराइल के जो नबी थे मूसा। और वयकफुरूना, और वो कुफर करेंगे, बिमा वराअहू, जो उसके सिवा है। लफ्जों पे भी गौर करें ना, तो नो मीनू के जमा मुतकलिम, जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना हम सब ईमान लाएंगे, तो इसके जवाब में आगे यकफुरून में क्या आना चाहिए था? नकफुरून, हम कुफर करते हैं। फर्क समझ आ रहा है? लेकिन क्या है? ईमान अपने ऊपर, और यकफुरून वो कुफर करते हैं, यानी ये अल्लाह सुबहाना ताला का कमेंट भी हो सकता है, और वो अपने अपने ऊपर बात लेने की बजाय थर्ड पर्सन में उसको कह रहे हैं, वो कुफर करते हैं, बिमा वराहू, जो उसके सिवा है। किसके सिवा? हु की जमीर किधर है? तौरात के, जो उनकी किताबों पे उतरा है, उसके अलावा हर चीज का इनकार करते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला का कमेंट है, वहुवल हक्कु, अगरचे वो हक ही हो। मुसद्दिकन, सच्चा करने वाला, किस चीज को? लिमा माहु, जो उनके पास है। यानी अल्लाह ताला हैरत का अंदाज हमें यहां देते हैं कि तुम अपने सिवा किसी को नहीं मानोगे, इनकार कर दोगे सारे दीन का, चाहे वो दूसरा बंदा जो तुम्हें दीन पे बुला रहा है उसकी बात हक को फिर भी नहीं मानोगे। एक क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि हमने सिर्फ अपने ही नबियों की बातें माननी है, और आज की जुबान में आप कह लें कि अपने ही बुजुर्गों की और अपने ही मसलक के इमाम आयमाए कराम की ही सारी बातें माननी है, तो फिर एक सवाल का जवाब तो दो। यानी आप कह लें कि उनको बेबस करने वाला अंदाज है, कुल फलीमा तक्तुलून अंबिया अल्लाही, फिर क्यों तुमने कत्ल किया अल्लाह के नबियों को? मीन कबलू, इससे पहले। आज तो कह रहे हो कि हम अपनों को मानते हैं, तो फिर अपनों को तो जरूर मानना होगा ना, तो अपनों को तो मानने की बजाय तुमने कत्ल किया था। बल्कि तख्तलून में देखिए मुजारे का सीगा कि अभी भी कर रहे हो, और जहां भी तख्तलून का लफ्ज आप कुरान में पढ़ेंगे ना, ये फेले मुजारे में आ रहा है इनके इनके टेक्स्ट में, यानी ये करते थे, कर कर रहे हैं और क़यामत तक इनकी खून में हक वालों का कत्ल ही है। इन गुंदमों में नहीं, अगर तुम सच्चे हो। नहरियो समझ आ गया? आप बिल्कुल इसको आज की जुबान में नहीं समझ सकते। आप किसी को कहते हैं आइए कुरान पढ़ें, किधर आए, इधर आ जाए। चले अपनी क्लास की मिसाल ले लेते हैं। आप किसी को कहते हैं आप नूरुल कुरान पे आइए, तो लोग क्या कहेंगे, वो कौन है, उनका क्या जमात है, उनका क्या गिरोह है? आप कहते हैं हमें तो आज तक उनका जमात गिरोह उन्होंने कभी नहीं बताया। तो कहेंगे नहीं भाई, हम तो हनफी हैं, हम तो बस उस स्कूल में जाते हैं जहां इमाम अबू हनीफा की बातें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप उधर चले जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दें। वो आप वो उस मदरसे में भी कब आखिरी दफा गए थे जहां इमाम अबू हनीफा की बातें पढ़ाई जाती हैं? वो नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, मजबूर है, मुश्किल है। अच्छा जी, इमाम अबू हनीफा साहब कहकर गए, वो सारा कुछ आप मानते हैं? क्या मतलब है? ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा ने सूद के बारे में क्या कहा था, और इमाम अबू हनीफा 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ने और मस्जिद में जाने के बारे में क्या कहते हैं, और इमाम अबू हनीफा की फिक्र में औरतों को कैसे कपड़े पहन के बाहर जाना चाहिए? आप कोई जवाब नहीं होगा। बात समझ गए? सरासर फिरका वाराना जहनीयत वाले ये सवाल जवाब है कि वो सिर्फ जान छुड़ाते थे, मानते वो अपनों की भी नहीं है। सीधी सी बात है, ना मानने वालों को सिर्फ बहाने चाहिए होते हैं, यही बात करके अल्लाह ताला कह रहे हैं हक का इनकार करते हो। और दूसरी बात है, अल्लाह इनको आईना दिखा रहा है कि देखो जब तुम्हारे सामने नबी आए तो तुमने तो उनको कत्ल तक कर दिया। असल बात है कि ये सिर्फ एक ढाल बनाते हैं, ये सोचते हैं कि हम जान छुड़ा लें और हम इन चीजों से अपने आप को पीछे कर लें। तो लिहाजा क्या पता चला कि जो लोग एक जगह से नहीं फायदा उठाते ना, मेरा तजिया है कि वो दूसरी जगह से भी कोई नहीं उठाते। और जिनमें इल्म की तलब होती है ना, तड़प होती है, वो एक से भी सुन लेंगे, दूसरे से भी सुन लें। आप हफ्ते को एक जगह जाते हैं ना, जाइए, आपको कौन रोकता है? आप इतवार को दूसरी जगह आ रहे हैं, आ जाइए, सुन लें, क्या हर्ज है? आपका अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मतलब इस वक्त आप मेरे पास ये बात सुन रहे हैं और इस वक्त आपके पास कुछ और सुनने को नहीं था, तो आप सिर्फ ये कहकर छोड़ दें नहीं हमारे पास भी कुछ होता है, हम इनका क्यों सुने? तो क्या हमारे पास इस वक्त कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप तो घर में चाय का कॉपी आधे घंटे में पी रही थी, तो आप हमारा भी सुन लीजिए, जाके आप अगले दिन उनका भी सुन ले। दिल नहीं खुले हुए, यहाँ तासुब, तंग दिली और नैरो माइंडेडनेस शो हो रही है। जो लोग दीन के नाम पे शो करते हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि ये ऐसी बातें करके असल में अपने दिल के पोल खोलते हैं। और यहाँ बहुवल हक को मुसद्दिक लिमा बता रहा है कि ये दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे है, सच्चा दीन है, इसको मान जाए और किताब भी दुरुस्त है। तो ये सवाल जवाब जो उनसे किए गए ना, ये असल में उनको उनका आईना दिखाया जा रहा है, उनका दावा ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता है। अगली आयत में बात कंटिन्यू होती है, वलकद जाकू मूसा, और आगे अलबत्ता तुम्हारे पास मूसा, फिर यहाँ वही ताकीदे हैं वलकद, हालांकि आयत कैसे हो सकती थी, जाकू मूसा, बात समझ आती है ना, आए तुम्हारे पास मूसा, ये इतनी लंबी बात क्यों की कि और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा, बिलबैना दलीलों के साथ, ये कौन सी दलाइल थे? कोई आप में से जरा समझदारी से बोले वरना पकड़ा जाएगा। चले आयत पूरी करके देती हूँ आपको मौका दोबारा, सुम्मत तखस्तुमुल इजला, फिर तुमने बछड़े को बना लिया, क्या बना लिया, अल्लाह ने नहीं बताया लेकिन पता है हमें कि इन्होंने माबूद बना लिया, मिम बाद ही उसके बाद, किसके बाद, जब मूसा तूर पे गए हुए थे उसके बाद, वन तुम जालिम हो न तुम जालिम हो, यहाँ जालिम से मुराद मुशरिकून। आप बताइए यहाँ बिल बैयिनात कौन सी बैयिनात है, क्या तौरात है जी, मुझे शाबाश, यानी फिरौन का डूबना और आसमानों से उनके अजाबों का टूटना मुराद, क्योंकि अभी तक तौरात तो आई नहीं हुई। आप लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बातें सुने पड़े, उनको क्या पता कि तौरात कब उतरी और यहाँ किसकी बात है। तो कुरान सीखने का यही फायदा होता है कि कॉन्टेक्स्ट के साथ बातें पता चलती हैं। आज आप एक झूठी खबर बाहर फैला दें, लोग के कहाँ आई है आपके पता नहीं, BBC पे आई है नहीं, CNN पे आई है नहीं, तो कहाँ आई है, तो वह झूठ है। तो कुरान के बारे में जिसका जो दिल चाहे जहां से मर्जी कोट कर दे, उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता। तो क्या पता चला कि तुमने मूसा के जरिए जो बैयिनात देखी, यद बैजा देखा, टिडियां देखी, तूफान था, जुएं आ गई, मेंढको का अजाब था, खून गिरा तुम पे, ऐसा था, यद बैजा था, समंदर में रास्ता बना, पत्थरों में से पानी निकला, मनोसलवा उतरा, ये सारे मौजज़े देखकर भी तुम्हें नहीं यकीन आया कि मूसा सच्चे हैं? और मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी निशानियां क्यों लाए थे? शोभताबाजी थी, जादूगरी थी? नहीं, इनको अपने रसूल होने का यकीन दिलाना था। और बछड़े को पूज लिया, एजल कलस पीछे भी गुजरा, यहां भी वही 40 रोजा उनका जुर्म। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी ये बात करके वन तुम जालिमुन क्या कहा, तुम मुशरिको, क्योंकि इन शिर्क लजुल्मुन अजीम। बात समझ आ गई आपको? खुलासा क्या है कि ये मुसलमान क्यों नहीं होते? तासुब है, दिल में अपने आप को हक पे समझते हैं, और चूंकि दीन भी इनका मर्जी का नहीं है इसलिए इनको अच्छा ही नहीं लगता। खैर आगे चलिए। वही जखजना, और जब हमने लिया मीसा ककुम तुमसे वादा, मीसा का लफ्ज पीछे भी आया था, थोड़ी सी इसमें मजीद वजाहत ले लें। वसक से, वसक रत रस्सी को कहते हैं। आप जब किसी के साथ फ्लच या मीसा को पुख्ता वादा करते हैं तो आप अगले को बांध लेते हैं ना, मतलब आप कहते हैं 3 बजे मैं आपसे यहाँ मिलूंगी, तो 3 बजे आप भी होंगे मैं भी होंगी। तो वसक वसूक क्या है? पुख्ता वादा करना, अपॉइंटमेंट के मानों में, या पुख्ता बात की। वरफाना फौकुकुम तूर, और हमने बुलंद कर दिया तुम्हारे ऊपर तूर को। पीछे गुजर गया वाक्य, गुजर चुका है। खुजू मा तईना को, इसको हाईलाइट करें, दूसरी बार आया है। खुजू ले लो, पकड़ो, मा आतईना कुम, जो हमने तुमको दिया। क्या पता चला? तौरात अल्लाह की तरफ से थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं लिखी। भी कुव्वतन, कुव्वत के साथ पकड़ो, क्या मतलब? तौरात को दोनों हाथों से पकड़ो और गिर जाए तो उसके वजन काटा तोल के दे दो। जो हम में से कुछ लोगों का कुरान के साथ ताल्लुक है, नहीं, कुव्वत से मुराद हर तरह के हालात में पकड़ो। जिंदगी में मुश्किलात हों, बीमारियां हों, परेशानियां हों, मौसम की शिद्दतें हैं, सारा मुआशरा दूसरे तरफ है और तुम अकेले हो, लेकिन इसको पकड़ रखो और बस माओ। और पकड़ना कब नसीब होता है? जब बंदा गौर से सुनता है। तो सुनो भी तो सही। कालू, वो बोले, समे ना, सुना तो है हमने, सुनते तो हम बहुत हैं, कान तो हमारे बहुत सुन रहे होते हैं, चलते फिरते सुनते हैं, टेप से सुनते हैं, रिकॉर्डिंग से सुनते हैं, फोन से सुनते हैं, व्हाट्सएप से सुनते हैं, ये कानों के अंदर टकराता है। आप खुद फील करते हैं कि यहाँ बैठ के पढ़ने में और घर में ऐसे चलते फिरते रिकॉर्डिंग में लेसन सुनने में फर्क होता है? वो सुन रहे होते हैं जस्ट, जैसे सारा दिन हम सुनते हैं लेकिन आधी बातें हमें समझ ही नहीं आ रही होती, और पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क है। तो ये कहते थे सुनते तो बड़ा है बट वाह सही ना, मानते कोई नहीं है। वजह ना मानने की वजह आगे लिखी है, वह श्री वी खुलू बेहमोले जिल, और पिला दी गई उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत। यहां तक रिवायत में आता है कि बछड़े की जो को जलाया था ना मूसा ने, सूरत अल अराफ में आता है, लनुहर्रिकन्नहु, हम उसको जलाएंगे फिर उसकी राख को पानी में डाल देंगे। तो जब इन्होंने देखा ना बछड़ा जलाया गया तो उसकी राख उन्होंने दरिया में डाली तो उसकी राख मिला पानी जाके पी गए। इतनी मोहब्बत थी इनको, अंधी मोहब्बत। भी कुफ्रिहिम, अपने कुफर के साथ, कुल भी समा या मुरुकुम भी ईमानुकुम, कह दो क्या बुरा हुक्म देता है तुमको इसका, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यानी तुम्हारा ईमान कितना थर्ड क्लास है, एक जिंदा हस्ती को छोड़कर एक बछड़े की मोहब्बत में चूर हुए हुए हो। इसमें भी आप देखिए कि वो पीछे जो बातें गुजरी है ना उसी में यहाँ आपको समझ आता है कि कौमें गुमराह क्यों होती हैं, और गुमराही की मुख्तलिफ सूरतें किस तरह से सामने आती हैं। शोबदाबाजी, इधर की बातें उधर की बातें, संजीदा तालीम लेने वाले आज कितने हैं दुनिया में। आप एक जरा को महफिल नात मुकर्रर करें, 1000 बंदा जमा हो जाएगा। कुरान खानी रख लें, 500 बंदा जमा हो जाएगा। आप मिलाद रख लें तो 700 बंदा जमा हो जाएगा। आप कहते हैं ये कोर्स कर लें, इसमें आपकी जिंदगी है, तो 70 भी आ जाए तो बड़ी बात है। ये बंदों की कमी बेशी है। यकीन कीजिए कि लोग बहुत नाकदरी करते हैं, और मैं इस चीज को बड़ी शिद्दत से महसूस करती हूँ कि अगर पता लग जाए ना इसमें क्या दौलत है तो हम कुर्बानियां भी देने को है। तो समय ना वा सही ना क्यों कहा, ये कौन सा रवैया होता है जान बचाने वाला? सुनते इताअत नहीं की, क्योंकि यहूद वक्ती तौर पर जान बचाने के लिए कहते हैं हमने सुना, पीछे क्या आता था, इताअत करो, यहां नाफरमानी है, ये दिल की पुकार थी, हमने कौन सा माना। कई लोग कहते हैं हम सुनेंगे मानेंगे नहीं, तो ठीक है ना माने, किसी उस्ताद को मेरा नहीं हाल हक है या वो मजबूर करता है। मैंने तो कभी अपने किसी साथी को देखा भी नहीं कि वो कर क्या रहा है, मैं कहते सुनने आ रहे ना ये उन सब से बहुत अच्छा है जो नहीं सुनते, कभी अमल कर लेगा, जो जिस हाल में सुनते हैं सुन ले। दूसरी बात है ये जिद और कुफर और दुश्मनी की बात है। फिर इसी तरह से ये जो उश्रिबु फी कुलूबी मिलीजिल कहा गया ना, तो इससे मुराद ये है कि दिल बछड़े की मोहब्बत और उसकी इबादत के रंग में रंगे गए, और दिल में मोहब्बत ऐसे पड़ गई कि वो हिल नहीं सके। फतुल कदीर एक तफसीर है अरबी की, वो लिखते हैं कि पानी इंसान के रगो रेशे में खूब दौड़ता है जैसे कि खाना नहीं दौड़ता। यानी सवाल है कि उशरिबू क्यों कहा गया, आकिलू क्यों नहीं कहा गया, या कला क्यों नहीं, क्योंकि पी भी चीज सारे जिस्म में जाती है ना, पानी हर जगह जाता है। मुराद है कि मोहब्बत उनके रेशे रेशे में भर दी गई। मोहब्बत इंसान को बहरा बना देती है ना, तो हक नहीं समझ आता ये भी पता चलता है। मुराद क्या इसे, नाफरमानी, कुफर और बछड़े की इबादत। आखिरी सा बड़ा प्यारा आयत का, कैसा बुरा ईमान है बेसम यामरुकुम भी ईमान को। थोड़ा सा ईमान पे बात करूंगी। आप देखिए कि ईमान पुराना हो जाता है। आप कपड़े सर्दियों के संभालते हैं ना, फिर हवा ना लगाएं तो उनको कीड़ा पड़ जाता है। हमारा ईमान भी जो है ना, ये हवा चाहता है, और ईमान को हवा किसकी चाहिए होती है, अमल की। ईमान लाएं और अमल की हवा ना दें तो ईमान को कीड़ा पड़ जाता है। अमल करके दिखाएंगे, और ईमान का आईना अमल है। जब हम कोई बात सुने फिर उस पर अमल करते जाएं, तो अल्लाह के हुक्म से फिर वो और भी करने को दिल जाता है। जैसे खाना खा लें तो हजम हो जाए तो फिर भूख लग जाती है। तो जब कुरान आपने सीखा, आज एक लेसन लिया, अब इसमें जितनी बातें थी हस्बे तौफीक उसमें से अमल करें, कल फिर आने को दिल करेगा। आप सोच पड़ जाएंगे, नहीं मैंने जरूर सुनना है, मैंने देर से नहीं आना, मैंने वक्त पे आना, ये है। और अगर आज का सबक ही ना सुना हो, छुट्टी कर ली, तो कल आने को दिल ही नहीं करेगा। बड़े मुश्किल से लोग आते हैं छुट्टी करने के बाद, तलब खत्म हो जाती है, तो लोग कहते हैं ये कैसा खोखला ईमान है तुम्हारा। देखिए ईमान तो जिस्म में खून की तरह सेहत होती है, आप हेल्दी फील करते हैं, आप अमल करते हैं, और अमल के आईने में ईमान को देखें। हर चीज का एक आईना होता है ना, आईना आपको आपकी असल सूरत सूरत दिखाता है। आपको मुझे कैसे पता चले मेरा ईमान कैसा है, तो अपने अमल देख लीजिए। ये बहुत बड़ा धोखा है कि फला है बड़ा ईमान वाला, बस नमाज नहीं पढ़ता, है बड़ी नेक, बस झूठ बोल देती है। नहीं, आपका अमल आपकी गवाही देता है कि आपका ईमान कैसा है। अब आखिरी आयतों में एक बहुत ही बेबस करने वाला अंदाज है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो आयत 94 से 96 है ना, ये एजाजुल कुरान है। एजाज किसको कहते हैं, मुजजा। और दूसरा इसका नाम लिख लीजिए, चैलेंज। नबी सल्लम को दावत देते हुए जब इतना अरसा गुजर गया और लोगों ने नहीं माना और जो भी हालात हुए, अब यहाँ इनको घेरने वाला एक अंदाज है। दोनों आयतों को इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर बात तीनों आयतों को इकट्ठा पढ़ेंगे। कुल कह दीजिए, इन कानत अगर है, लकुमुद्दारुल आखिरतु, तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इंदल्लाहि खालिसतन, अल्लाह की नजर में खालिस, यानी मखसूस तुम्हारे लिए अल्लाह ने कोई आखिरत में जन्नत रखी है। और ये जो दारुल आखिर है ना, ये जन्नत का नाम लिखा हुआ इधर, कि अगर वाकई तुम सोचते हो कि जन्नत जो है खालिस अल्लाह ने, खालिस जिसको कहते हैं असाइंड ओनली फॉर रजिस्टर्ड और फुला, यानी जो यहूद का ये दावा था कि हम ही जन्नत में जाएंगे, पीछे बात हुई है ना लन तमस्सुन नार, तो अल्लाह तआला कह रहे हैं तुम वाकई ये कहते हो कि जन्नत में हमारे लिए घर है, तो फिर मिन दूनिन नास, लोगों को छोड़कर, तो फतमन्नुल मौत, फिर मौत की तमन्ना करो। यहाँ तमन्ना से मुराद दुआ नहीं है, तैयारी है। फिर मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। आपको सिनेरियो समझ आ रहा है, यहूद उठते बैठते लोगों को मुश्किल में डालते थे। क्या कहते थे, हमने मरते ही जन्नत में जाना है, हमारे लिए वहां महल है, हमारे लिए दूध की नहरें हैं, फलां की नहरें हैं। अच्छा दुनिया में तो ये देखिए, तो मारे ही खा रहे थे ना, इनके हालात बड़े खराब हो रहे थे। तो फिर ऐसे लोगों से कहा जा सकता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं इसको छोटे से मिसाल से आपको समझाती हूँ। आप किसी को देखते हैं कि वो अमेरिका गया, चले आप नॉर्वे में बैठे हैं तो नॉर्वे की मिसाल दें, ना जॉब है, ना पैसा, ना मुश्किल है, और यहां बैठ के क्या गए, पाकिस्तान में मेरे 5 किले, पाकिस्तान में मेरी 10 भैंस है, और सो ऑन। तो एक दिन कोई करीबी प्यारा दोस्त कहेगा, फिर यहाँ के धक्के खा रहे हो, फिर वापस चल जाओ। जब वहां तुम्हारी इतनी जगीरें हैं, तो तुम बड़ी ना समझी कर रहे हो कि यहाँ के बैठे हुए हो। यही बात कि जब इतनी मोहब्बत तुम्हें, तुम्हें इतना यकीन है कि वहां तुम्हारे लिए ये बहुत कुछ है, तो फिर तुम जाओ, फिर मरो। लेकिन ये बात झूठ थी। लेकिन लफ्ज खालिस खालिस है ना, खलस खलूस वही लफ्ज है, यानी खलस खलूस मस्दर से इसम फाइल है, सादा और बगैर मिलावट के होना, जैसे नासर है। मुराद ये तुम्हारे लिए आखिरत का घर यानी जन्नत महसूस है, तो फिर मरने की तमन्ना करो ताकि जल्दी पहुंच जाओ। होगा क्या, वले ये तमन्ना हुआ बदन, वो हरगिज़ नहीं तमन्ना करेंगे इसकी कभी भी। आबादन जो है ना, ये इस्म ज़र्फ़ है, जैसे उर्दू में भी आप कहते हैं ना आबदुल आबाद, और यह तमन्ना वही लफ्ज़ है जिससे पीछे आप गुजर चुका अमानिश और उमनिया, तमन्ना का वही लफ्ज है, झूठी तमन्नाओं के लिए आता है कि तुम जितना मर्जी इनको कह दो ये कोई नहीं तमन्ना करेंगे। इसकी वजह बीमा कदमत आई भी है, वजह इसके जो इनके हाथ आगे भेज चुके। कदम क्या होता है? पाँव, चलना, आगे भेजना। आई दी हिम मुराद ये कि अपने हाथों से जिन्होंने आगे भेजा, हालांकि इनको आई दी हिम की जरूरत नहीं थी। ये गुस्से की शिद्दत है, जैसे आप अपने बच्चे को डांटे ना, एक होता है आप कहते हैं लिखो और आप देखते हैं बच्चा ढीठ हो गया, आप कहते हैं अपने हाथों से लिखो, लिखना पड़ेगा तुम्हें। एक कहते हैं पानी लाओ, अरे आप कहते हैं अपने कदमों पे चल के जाओ और पानी लाओ। गुस्सा है अल्लाह को इन पर, शिद्दत है कि अपने हाथों से जो तुमने किया वो करो। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अलीम फ़ईल का वजन, खूब जाने वाला। अच्छा खैर होगा क्या, आयत अगली में बात पूरी होती है, वला तजीदन्नहुम, और अलबत्ता जरूर तुम उनको पाओगे। तजीदन्ना वजदा से, ईजाद करना भी इसी से है, वजूद भी इसी से है। तुम पाओगे यानी यू विल फाइंड देम, क्या अहरसन्नास, सबसे ज्यादा हरीस लोगों में से। यहां देखिए अहरस का लफ्ज आया तमा के मानों में। अरबी जबान में तीन लफ्ज तमा को शो करते हैं। एक होता है तमा, किसी चीज की दिल में तलब होना, कभी उम्मीद पैदा हो जाना। उसके बाद होता है हिर्स, यहां उससे अहरस है। हिर्स कहते हैं किसी चीज के लिए तमा या रगबत जब बढ़ जाए, अपने फायदे के लिए हो या दूसरे के लिए। हिर्स अच्छी भी होती बुरी भी, यानी जब अमल शुरू हो जाए। फिर इसी तरह शुक होता है, मुराद ये कि ये सबसे ज्यादा तलब रखते हैं किस बात की, अला हयातिन, जिंदगी पर, जीने पर। वमिन अल्लज़ीना अशरकू, मुशरिकों से भी ज्यादा, यानी इनको जीने का शौक मुशरिकों से ज्यादा है। यवद्दु अहदुहुम, उनमें से हर एक चाहता है। वुद जो लफ्ज है ना यवद्दु में, ये मोहब्बत का अगला दर्जा होता है। अल्लाह सुब्हान तआला का नाम भी अलवदूद, यानी दे वॉन्ट या दे लव। क्या हर एक उनमें से, लव यु अमरु, काश वो उम्र दिया जाए। अमर यु अमिरु, तामीर कहते ना इमारत तामीर करो, इसी से लव फिर उम्र आबाद करना, उम्रा भी इसी से ही है। यानी इनकी ख्वाहिश क्या है कि हमारी उम्र कितनी हो, अल्फसना, हजार साल। और वो शेर भी है ना कि जियो तुम हजार साल, और हर दिन के हो, हर साल के हो दिन हजार। क्यों भाई ऐसा करना चाहता है? ताकि लंबा जिएंगे तो अल्लाह को हमारे गुनाह भूल चुके होंगे, फिर अल्लाह हमें नहीं पकड़ेगा, पुराना हिसाब है, पुरानी फाइलें हैं, इस मुकदमों को डिलीट करो। नहीं, वमा हुआ भी मुजाहिही, और नहीं है वो छुड़ाया जाने वाला। ये नया लफ्ज है यहाँ आपके लिए और बहुत यूनिक लफ्ज है। पहली बात है ये रुबाई है, इसका रूट ज़ह, जैसे जलजला होता है ना, इस तरह से ज़ह ज़ह किस्म फाइल है ये। मस्तर के मानी में दूर करना, मानी के बड़ी उम्र दिया जाना, मुराद के अजाब आखर से दूर करने वाला, यानी लंबी उम्र इनको अजाब से नहीं बचाएगी। क्या, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो वो अमल करते हैं। थोड़ी सी बात तो आप तर्जुमे से समझ आ गई है ना, जब कोई बड़े दावे करे तो उसको भी चैलेंज तो किया जाएगा ना। यहूद को बहुत बड़ा दावा था कि हम मरते ही जन्नत में जाएंगे और हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा, तो कहा गया ठीक है चलो फिर करो बिस्मिल्लाह, तुम अपनी मौत की दुआ करो, वहां तो तुम्हारे लिए हूरे हैं और दूध है, तो फिर तुम दुनिया में जी कर क्या कर रहे हो। कुल से बात शुरू की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में रखा गया। अब इसमें चंद बातें हैं जो हमारे लिए जरूरी है समझना। पहली बात यह कि क्या मौत की तमन्ना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। वजह क्या है कि मौत की दुआ भी नहीं की जा सकती, तमन्ना भी नहीं की जा सकती। यहाँ कोई दुआ ही नहीं सिखाई जा रही, चैलेंज किया जा रहा है। उनके गलत रवैये के जवाब में उनसे ये कहा जा रहा है कि चलो फिर तमन्ना करो। हाँ, मौत की तैयारी की जा सकती है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये दावत मुबाहिला है। मुबाहिला किसको कहते हैं? जब दो गिरोहों में दलाइल के साथ बात ना हो तो फिर खुले मैदान में जाकर मुबाहले होते हैं। जैसे आप देखिए आज भी बहुत सारे अकायद बिगड़ गए हैं ना, बाज़ नबी सल्लम के बाद दूसरों को भी नबी मानते हैं, तो इनके साथ फिर जो उलमाए हक है वो मुबाहले की दावत देते हैं। खुले मैदान में आ जाओ और अल्लाह से बोलो कि अगर हम सच्चे हैं तो हमारे सच्चे हो जाए, तुम सच्चे हो तो तुम। ये दावत मुबाहला है। अल्लाह के नबी ने यह दावत मुबाहला मदीना के यहूद को दी और उनको सांप सूंघ गया। بولے ہی نہیں آگے سے. اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے یہ دعوت قبول کر لیتے تو مدینہ کی وادی ان کے اوپر آگ برساتی, اور ایک بندہ بھی ان میں سے جیتا نا, یہ تو بچ گئے کہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا ہم جھوٹے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ یہ دعوت مباہلہ ہے. دوسری بات یہاں سے ایک بہت ہی رقیق بات سمجھ آتی ہے کہ موت سے بچنا اور لمبی زندگی کی عمر. دیکھیے فطرت کے اعتبار سے انسان کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے, بٹ تیاری کی ہونا تو موت بری نہیں لگتی. کیا آپ اپنی موت سے ڈرتی ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ڈر گناہوں کا ہونا چاہیے, موت تو اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے. دو تمنا ایک ایمان والے کی, جنت اور اللہ کا دیدار, اور یہ دو مرے بغیر نہیں ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو مومن تو موت سے پیار کرتا ہے. اب یہ نہیں کہ خودکشی کرو, نیور, حرام ہے اسلام میں, نہ اپنی جان لے سکتے ہو نہ کسی کی. اب اس کو ایسے سمجھیں, رات کو چلے آپ کو شوق ہے امریکہ جانے کا, چلے کینیڈا جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے نیاگرا فال دیکھنی ہے, بہت سنا ہوا ہے, ٹکٹیں بک ہو گئیں, اب ایک ایک دن کیا تیاری ہو رہی ہے, کب جائیں گے, بچے بھی پوچھیں کب جائیں گے, ہائے 10 گھنٹے کا سفر ہے, ہائے دیر, ہائے وہ, جانے کی تیاری ہے نا, تو جانے کو دل کر رہا ہے. اور اگر تیاری کوئی نہ ہو اور جانے کا وقت قریب آ رہا ہو تو پریشان ہوں گے نا. تو جو زندگی کا مقصد سمجھ گیا نا, دیکھیں میں نماز روزے کی بات نہیں کر رہی, بٹ نماز کے بعد جو نماز کا مقصد ہے نا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یا نماز بندے کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کر دے. یوم قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ لوگ کھڑے ہوں گے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, تو پھر موت بری نہیں لگتی, بندہ زیر لب مسکراتا ہے, ہاں 10 گھنٹے کی فلائٹ تو ہے, بٹ اس کے بعد جب میں ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ اتر کے پھر ٹیکسی لے کر 2 گھنٹے میں نیاگرا پہنچ جاؤں گا, پھر میرے آنکھوں کے سامنے وہ نیاگرا فال ہوگی, بس وہ احساس رستے کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. صحابہ کرام کی کوششیں کچھ اسی قسم کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا احرص الناس علی حیاتن, یہ بھی بہت بڑی سچائی ہے. آپ لوگوں میں سب کو دیکھ لیں, سب سے زیادہ مرنے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو جن کا ذکر ادھر ہے, کیونکہ آخرت میں ہے ہی کچھ نہیں, زندگی کے ہری دنیا کی زندگی میں ڈوبے, تڑپ ادھر کی, طلب ادھر کی, اور وہاں کا برا حشر بھی تو پتا ہے نا. کیسے پتا چلے آپ کو مجھے کہ میری زندگی میں کیا ہے؟ تو دنیا سے محبت جو ہے نا, یہ موت کو مشکل کرواتی ہے. چند نشانیاں نوٹ کریں. کیسے پتا چلے کہ میں دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہوں یا آخرت سے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں لمبی امیدیں باندھنا. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, کتنے لمبے. آج آپ دنیا کے انسان, آج کے مسلمان کو یہ آیتیں سنائی جا رہی ہے, یہود تھوڑی پڑھ رہے ہیں اس وقت, ہم پڑھ رہے ہیں نا. مجھے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے, آج ہمارے بچہ 2.5 سال سے لے کر بچہ 25 سال کا ہونے تک یہ کس دنیا کو بنانے کے لیے بھاگ رہا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, وہ بہت اچھی بات ہے, بٹ مقصد تو نہیں. نماز آپ نے اپنے 10 سال کے بچے کو نہیں ابھی تک سکھائی, تو وہ چاہے فر فر کرتے رائمز پڑھ لے, نارویجن بول لے, انگلش بول لے, یہ آپ کی مرضی ہے. تو لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی علامت ہے. پھر زندگی کی ہرس ہو, چاہے وہ عزت کی زندگی ہو یا ذلت کی, یہ دوسری نشانی ہے دنیا سے محبت کی. تیسری چیز مال کی محبت, اور چوتھی آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی. دیکھیں گے, وہ چھوڑے ہیں, دیکھا جائے گا. وہ اپنے ایک پریزنٹیشن بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا, دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیسے دیکھا جائے گا؟ پتہ لگ جائے گا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے, عمر کی ہرس میں اور مال کی ہرس میں. یہ ترمذی کی روایت ہے انس بن مالک سے. اور یہ 1000 سال کی عمر کی بات کہاں سے ہو گئی؟ بلیغ ترین جملہ یہ زندگی کی ہرس کے لیے. پتہ کیا چلا؟ 1000 سال بھی یہ جیئیں گے نا تو بھی عذاب سے یہ رک نہیں سکیں گے. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ انسان کام کرے, تیاری کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جب کوئی اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے, فتنہ ہے جان کا, ایمان کا, زندگی کا, تو پھر یہ دعا کرے کہ اللہم ان کانت الحیات خیر لی, کہ اللہ جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے. پھر بھی دعا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. آج دنیا کا لائف سٹائل دیکھیں, انشورنس, مر نہ جائیں, ڈاکٹرز, چیک اپ, بیماریاں, और क्या विटामिंस, और ये खा लो, और हेल्थ और फिजियोथेरेपिक और टॉनिक। पूरी जिंदगी आज एक मुसलमान की भी वैसे बनती जा रही है, अफसोस की बात कहने लगी हूँ। नॉन मुस्लिम के पास सबसे कीमती चीज उसकी जिंदगी होती है, क्योंकि उसको पता है इसके बाद नहीं मिलनी, उसके गुमान के मुताबिक वो उसकी इतनी हिफाजत करता है। मोमिन के पास सबसे कीमती चीज उसका ईमान है, वो जान से ज्यादा ईमान की फिक्र करता है। अब जान बनाते हुए कपड़े ऐसे पहन के पहुंच जाए आप अपने थेरेपी कराने, जहां से जिस्म भी खोल रहा है, तो ईमान चला जाएगा, जान शायद बच जाए थोड़े दिन और। सारे सबक का खुलासा क्या है? बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको मुझे वाकई इस पूरे सबक में ये बात बताते हैं कि देखो, तुम उन जैसे काम ना करना, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामो। इसमें हमें ये सबक मिलता है कि हम कुछ ऐसे रवैये अख्तियार करें। नंबर एक, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना, तवज्जो से सुनना। लेकिन मजे की बात है, इस रुकू में 10 नाकाम लोगों के रवैये हैं। दो अच्छी बातें पढ़ी हमने और 10 बुरी। कौन कौन सी? तकब्बुर करना, रसूलों को झुठलाना, कत्ल करना, अपने दिलों को महफूज समझना, कुफर करना, अल्लाह की किताब को पहचान कर फिर इनकार कर देना, जिद करना, जुल्म करना, और सुनकर ना मानने का इजहार करना, और जिंदगी का हरीस होना। आप देखेंगे जैसा लेसन होता है ना, वैसे रवैये। किसी लेसन में से आपको 10-12 नेक लोगों के, कामयाबियों के नुस्खे मिलेंगे, लेकिन इसमें दूसरे हैं। करना क्या कि अपना वक्त और सलाहियतें माल मौत के बाद के लिए, जिंदगी के लिए तैयारी करनी है, वहां लगाना है। इसके बरक्स अगर आप मैं देखें तो अमूमन लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये हर एक अपने बारे में से एक सोच सकता है। और अगर आप पूरे सबक की का एक मेन थीम लेना, तो मुझे इसमें सबसे खूबसूरत आयत ये लगी है कि कुल भी समया मुरुकुम भी ईमान को, अजीब ईमान। अल्लाह ताला ने अपने एहसानों का जिक्र किया, मूसा को किताब दी, मुसलसल नबी भेजे, ईसा अलैहि सलाम को रोशन निशानियां दी। फिर दूसरा टॉपिक इन आयतों का था कि रसूल के आने पर यहूद का रवैया क्या था। किताबों को ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ महसूस किया तो सरकशी की, रसूलों को झुटलाया, कुछ को कत्ल किया। रवैये की खराबी का असल सबब क्या था? नफ्स की तसल्लियां कि हम अपने बड़ों का दीन नहीं छोड़ सकते। और चौथा टॉपिक हमने पढ़ा कि यहूद सच्चे हक परस्त नहीं है, क्योंकि नबियों को कत्ल किया, मौजजात का इनकार किया, बछड़े को माबूद बनाया, तूर पर मीसाक करते हुए ये कहा मानेंगे फिर नहीं माना, और दुनिया की मोहब्बत में डूबे रहे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हक पे जमने वाला बना दे, और मौत के बाद के लिए तैयारी करने वाला बना दे। अगला सबक बहुत अहम है, टॉपिक अभी बोल देती हूँ ताकि आप उन लोगों को भी बता सकें जिनको ये प्रॉब्लम है, और वो है जादू। हम इंशाल्लाह अगले सबक की रोशनी में जादू और जादू से मुतल्लिकात को देखेंगे कुरान की आयतों की रोशनी में। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.